दिन भर तारीख 4 नवंबर दिन शुक्रवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। सिमी के 8 कार्यकर्ताओं के जेल से भागने और उनके कथित मुठभेड़ में मारे जाने को लेकर भोपाल के मुसलमान गुस्से में।
इस अदालत ने कह दिया कि वो आतंकवादी संगठन के मेंबर थे। जब तक अदालत डिक्लेयर ना करे तो अदालत से ऊपर आप नहीं है, आप अदालत के नीचे हैं।
ग्रेटर नोएडा में मंगलवार रात ईंट भट्टे पर काम करने वाली महिलाओं के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की दर्दनाक दास्ता। विवेचना में सुनिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग।
उनके पास 3 कुरान रहते थे, तमिल में, एक इंग्लिश में, एक अरेबिक में, एक उनके पास भगवत गीता जरूर रहती।
सुनेंगे थोड़ा सा रुककर, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सिमी के 8 कार्यकर्ताओं की कथित मुठभेड़ में मारे जाने के बाद अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। मुठभेड़ के विरोध में भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद ने एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था, लेकिन प्रशासन के दबाव में उसे स्थगित करना पड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार रात को घोषणा की थी कि मामले की न्यायिक जांच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस एस के पांडे करेंगे। प्रदूषण के चलते दिल्ली में अधिकारियों ने करीब 1000 प्राइमरी स्कूलों को शनिवार को बंद रखने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक हाल के सालों में राजधानी में अब तक के सबसे खराब प्रदूषण के हालात देखे गए हैं। नगर निगम के प्रवक्ता योगेंद्र मान का कहना है कि सोमवार से स्कूल सामान्य समय पर खुलेंगे। इस फैसले का असर करीब 9 लाख छात्रों पर पड़ेगा। उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति पार्क गुन हे को चेतावनी दी है कि वो अपनी राजनीतिक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए उत्तर कोरिया में डर ना फैलाएं। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के अधिकारी चॉय जिन ने कहा कि इस तरह का विवाद पार्क को मुसीबत में डाल सकता है। उन्होंने कहा, पार्क गुन हे के पास इस समस्या से निकलने के 2 ही रास्ते हैं, या तो वो इस्तीफा दे दें या फिर महाभियोग का सामना करें। पहले भी जब दक्षिण कोरिया को आंतरिक संकट का सामना करना पड़ा है तो वो यही कहते हैं कि वो खतरे में हैं और कोई भड़काने का काम कर रहा है। पार्क गुन हे को खतरे की शिकायत या सत्तारूढ़ संकट से बाहर होने के डर से हमारे खिलाफ किसी को उकसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये थे चॉय जिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के अधिकारियों के मुताबिक कुर्द समर्थित विपक्षी राजनीतिक पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 नेताओं सेलाहतीन देमिरताश और फिगेन युक्सेकदग समेत 11 सांसदों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद उत्तरी टर्की के दियारबकिर में एक पुलिस स्टेशन के बाहर कार में बम धमाका हुआ। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनानी यिल्दिरिम ने कहा है कि इस धमाके में 2 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोग मारे गए हैं। इसके लिए उन्होंने पीकेके के विद्रोही गुट को जिम्मेदार बताया है। मिस्र के प्रधानमंत्री देश की मुद्रा के अवमूल्यन और ईंधन की कीमत बढ़ने के एक दिन बाद ही मितव्ययता के उपायों को ढूंढ रहे हैं। काहिरा में शेरिफ इस्माइल ने कहा कि सरकार पैसे जुटाने और आर्थिक सुधारों पर काम कर रही है। मिस्र के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को अमरीकी डॉलर के मुकाबले देश की मुद्रा का 48% तक अवमूल्यन कर दिया और ब्याज दरों में 3% की वृद्धि की। ईंधन की सब्सिडी कम कर दी गई और पेट्रोल के दाम 30-46% तक बढ़ गए। ये उपाय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1,20,00,000 का ऋण लेने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। आज के इस दिनभर कार्यक्रम की शुरुआत हम भारत से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जैसा कि आप जानते हैं, सिमी के 8 कार्यकर्ताओं के जेल से भागने और उनके कथित मुठभेड़ में मारे जाने को लेकर मुसलमानों में गुस्सा देखा जा रहा है। विपक्ष भी सत्ताधारी शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर निशाना साध रहा है। इस मुठभेड़ के विरोध में भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद ने आज एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, लेकिन प्रशासन के दबाव में उसे स्थगित करना पड़ा। बाद में ये लोग एक मस्जिद में इकट्ठे हुए और इस मुठभेड़ की जाँच की मांग की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश कल ही दे चुके हैं। भोपाल से सुरेश नियाजी की रिपोर्ट।
यह आवाज भोपाल के एक मस्जिद के अंदर इकट्ठा हुए मुसलमानों की है, जो शहर में हुई 8 सीमी कार्यकर्ताओं की कथित मुठभेड़ को लेकर खासे नाराज हैं। इस कथित मुठभेड़ के बाद मुस्लिम संगठन इसकी जांच को लेकर आगे आए थे, लेकिन आम मुसलमान चुप ही था। लेकिन आज आम मुसलमान इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नाराज नजर आया। इस कथित मुठभेड़ को ज्यादातर मुसलमान हत्या ही मान रहे हैं। हर कोई इसकी जांच की मांग कर रहा है ताकि सच्चाई सामने आ सके।
गलत हुआ था, मतलब टोटली गलत हुआ है। फर्जी है, किसी को जानकारी है नहीं है। रात में निकल के जा रहा है और सुबह डायरेक्ट एकों को इकट्ठा पटक दिया उनको मार के।
इसकी जांच होना चाहिए, बाकी कोई मुसलमान ये नहीं कह रहे कि खराब बात है, इसकी जांच होना चाहिए।
जुमे की नमाज के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने एक विरोध प्रदर्शन पुराने भोपाल में एक मैदान में करने का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी तो इसे एक मस्जिद में किया गया। हालांकि बाहर लगे सभी स्पीकरों को भी प्रशासन ने हटवा दिया था। जमीयत उलेमाए हिंद से जुड़े मुफ्ती जफरुल्लाह ने लोगों से कहा कि हमारी आवाज इस तरह से नहीं दबाई जा सकती है।
तमाम अखबार, तमाम मीडिया इस बात का गवाह है और एक एक बात इस बात की शहादत दे रही है कि ये वाकया जो हुआ है इसके पीछे पूरा प्लान है, मंसूबाबंद तरीके से इस वाकये को अंजाम दिया गया है। लेकिन ये बात बिल्कुल तयशुदा है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों की फितरत में जुल्म सहने का मिजाज नहीं रखा। उस जुल्म को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करना हमारा कानूनी हक है, हमें अपनी बात कहने का पूरा मुल्क के अंदर हक मिला हुआ है।
वहीं कई सीमी सदस्यों का केस लड़ रहे वकील परवेज आलम ने मारे गए लोगों को आतंकवादी कहने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी अदालत ने उन्हें अब तक दोषी करार नहीं दिया था, फिर किस वजह से उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है।
जिस अदालत ने कह दिया कि वो आतंकवादी संगठन के मेंबर थे, तो फिर ये कैसे कह सकते हो कि जब तक अदालत डिक्लेयर ना करे तो अदालत से ऊपर आप नहीं है, आप अदालत के नीचे हैं।
भोपाल में सोमवार को सीमी के 8 कार्यकर्ताओं की कथित मुठभेड़ में मौत हो गई थी। इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
दिवाली की अगली सुबह कथित मुठभेड़ में मारे गए भोपाल की सेंट्रल जेल से फरार सिमी कार्यकर्ताओं को सबसे पहले देखने का दावा करने वाले चश्मदीदों से बात करने के लिए बीबीसी संवाददाता विनीत खरे चांदपुर गांव जा पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ लोगों से बात की।
हम इस वक्त हैं चांदपुर गांव में, पीछे चारों तरफ खेत हैं, दूर मुझे छोटे छोटे पहाड़ नजर आ रहे हैं और ये इलाका उसी जगह से दूर है जहां पर पुलिस का दावा है कि उसने 8 कथित सिमी के कार्यकर्ताओं को गोली मार दी थी। पुलिस का कहना है कि वो सेंट्रल जेल वहां से दीवार फांद के भागे और यहीं ईटखेड़ी गांव है उसके पास उन्हें मार दिया गया। हमारे साथ दो लोग हैं। सबसे पहले आप बताइए, सोमवार की सुबह आपने क्या देखा?
बाहर 7:30 के समथिंग देखा, तो बाहर मुझे कुछ लोग जाते हुए दिखाई दिए नदी पर, उसकी काफी दूर।
यहाँ पास में नदी बहती है?
हाँ, ये नदी है पास में, यहीं पे हलाली
नदी, ठीक है।
तो उससे मैंने जाते हुए देखा तो मुझे कुछ मतलब ऐसा नहीं लगा कि कोई है, इनका मच्छी।
कितने लोग थे? करीब
करीबन 5-6 लोग थे। वो
दूर से आपने देखा?
हाँ, काफी दूर से देखा मैंने उन्हें। इसके बाद फिर मैं खेत पर आ गया, इसके बाद घर गया तो मैंने न्यूज पे देखा, फिर मुझे कुछ शक हुआ तो फिर 100 नंबर को डायल किया।
नहीं तो क्यों शक हुआ आपको? मतलब वैसे तो वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं,
लगा कि हो सकता है वही लोग हो, थोड़ी मन में शंका कि मतलब हो सकता हो बाई चांस।
कहा जा रहा है कि इस पूरे गांव को पुलिस वालों ने घेर रखा था और आपने उन्हें नजदीक से देखा क्योंकि?
नहीं, नहीं।
ज्ञान सिंह, आपने क्या देखा क्योंकि आपने पुलिस को फोन किया था? क्या कपड़े पहने थे, उनके हाथों में क्या था, ये बताइए जरा।
सर, जब मैं घर से निकला तो मैं नरेश के घर पे आया, इन लोगों ने बोला कि यहाँ पे पुलिस आई थी और सेंट्रल जेल से 8 कैदी भागे हैं।
ये आपको कैसे पता चला?
इन लोगों के थ्रू पता चला, इन लोगों ने मुझे रोक के बताया था। ये होगी 9:30 बजे करीब। फिर मैंने इनमें से एक को गाड़ी पे बिठाया और मैंने कहा पुलिस के पास चलते हैं अपन। इन्हें ये भी बताया कि हाँ सुबह सुबह यहाँ से नदी के किनारे से 6-7 लोग गए हैं। मैंने कहा चलो अपन बता देते पुलिस वालों को, तो पुलिस वाले मिले नहीं। इसके बाद मैं घर गया तो वहाँ पे मैंने न्यूज पे देखा जेल से 8 लोग सिमी के लोग भागे हैं। तो मैंने फिर थोड़ा मैंने कहा हो सकता है यही हो, तो फिर वापस इसी के घर पे गया मैं। एक दो लोगों से और जानकारी ली, मेरे भैया वगैरह हमारे खेत से निकल के गए थे, उनसे भी पूछा
जी
कि हाँ यहाँ से गए हैं। मैंने फिर 100 नंबर डायल करा तो तुरंत मैंने ये जानकारी दी कि इतनी दूर है, यहाँ पे है, रास्ता बताया सब कुछ। इसके बाद में मैंने बताया कि साइड है, 1/2 घंटे पहले यहाँ पे देखे थे वो लोग।
आपने जब पुलिस को फोन किया कितनी जल्दी पुलिस आई थी फिर?
सर मैं बता दूं 10:30 बजे उन्होंने फोन लगाया था, करीबन 11:15-11 बजे पुलिस आई थी।
आपकी बात हुई पुलिस वालों से किसी से?
नहीं सर,
कोई बात नहीं हुई आपकी?
सर उस मामले में हुई थी बस, बाकी उन्होंने सम्मान के लिए बुलाया था उस टाइम पे, उसी मामले में होती।
क्या नाम है आपका?
इमरतलाल।
इमरतलाल जी, आपने क्या देखा था?
साहब हम पानी पेर गया था, मैं देखा था हमने।
अच्छा, कितने लोग थे?
8 लोग थे।
कोई हथियार कुछ दिखा हो इस तरह का?
कुछ नहीं दिखाया सर।
यहाँ पर हम ये बता दें कि ईंटखेड़ी जो गांव है वहाँ के सरपंच हैं मोहन सिंह, उनसे हमारी कल रात में बात हुई है और उनका कहना था कि उन्होंने बहुत नजदीक से देखा और उनसे पूछा भी कि भाई आप लोग कौन हैं, और उनका कहना है कि उनके हाथ खाली थे और कुछ लोगों के हाथ में डंडे की भी बात। आप नरेश बताइए यहाँ पर भी माहौल कैसा है?
माहौल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं सर।
कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा डरे हुए हैं
सर। माहौल सहमा हुआ तो है सर अभी,
और सबको पता है कि क्या हुआ लेकिन बहुत खुल के कोई नहीं बात करना चाह रहा है।
विनीत खरे चांदपुर गांव में स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे, जिन्होंने दावा किया है कि कथित मुठभेड़ में मारे गए सिमी कार्यकर्ताओं को सबसे पहले उन्होंने देखा था। दिल्ली से सटी ग्रेटर नोएडा में मंगलवार रात ईंट भट्टे पर काम करने वाली महिलाओं के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। पीड़िता का कहना है कि कुछ अज्ञात लोगों ने तीन महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उनका सामान भी लूट लिया। नोएडा पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, हालांकि अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने हमारी सहयोगी रचना वर्मा के साथ आज वो घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़िता से मुलाकात की। सुनिए इस पीड़िता को, उनके इस दर्द को।
जो दुनिया के साथ में हो रहा है ये आज हमारे साथ में हुआ, ये और किसी के साथ में आगे ना हो। कल रात ऐसा हुआ कि जब हमारे सारे वो बांध दिए जेंट्स ले जाके, ने एकदम मुझे पकड़ के चांटा मारा। मैं बोली तो आप पुलिस वाले नहीं हो, आप कोई और हो। सगले जनों को अंदर ले जाके बंद कर दिया, बच्चों समेत। फिर मैंने बहुत चीखी चिल्लाई, फिर एक मोटा सा आदमी आया और मुझे खींच के वहाँ से चल दिया। मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें मारी, मैं बोली भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। मगर मैं क्या करती, भैया ने तो पहले ही बंदे पड़े थे। भैया बतेरे, भैया ने भीतर से ये कहा कि भैया मत मारो हमारी बच्चियों, मत मारो इसे, मत मारो। फिर मुझे डंडों से वहाँ पर गिर के मारा कोने पे। जब मुझे मारा तो मुझ में है ही कितने जाने, मैं पतली दुगली, मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे खींच के कमरे में ले गया वो। जब उनने मेरे से ज़बरदस्ती करा तो मैंने, मेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा, बस सिर्फ एक डंडा पड़ा था, वो मैंने उठा के उसके सर में मार दिया। उनने फिर उस गुस्से में और ज़्यादा हमें बजाने लगा। सिर्फ एक शख्स था जिसने मेरे साथ में बदतमीजी करी, मोटा सा, उसे मैं पहचान सकती हूँ खूब आराम से। और जिस दिन भी मेरे सामने कोई पुलिस वाला भी तुम में से पकड़ ले तो बस हाथ जोड़े की घर जाके मुझे ज़रूर बुलाएं, मैं खुद उसे सजा देना चाहती हूँ। मैं तो पहले से ही तब परेशान थी और ज़्यादा, मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं अपने भैयों में कमा के खा लूँगी, मेरी ज़िंदगी पार हो जाएगी इस बच्ची के सहारे से। मेरे पे क्या है, एक ही बच्ची है बस। अपने माँ बापों के साथ रहती हूँ मैं, अपना खर्चा खुद चलाती हूँ मैं, अपने भैयों के भरोसे भी नहीं रहती। पता नहीं दुश्मन जन कहाँ से आ गए, उन्हें भी ऊपर वाला सजा देगा, खुदा जरूर देखेगा उन्हें भी। बस तुम सबसे यही दुआ कि जैसा मेरे साथ में हुआ ऐसा और किसी के साथ में ना हो। कल मैं पूरी रात नहीं सो पाई, मुझे जब जरा भी आठ होती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई लोग फिर से दोबारा आ गए हों। मैं पूरी रात नहीं सोई, एक डंडा मैंने रखा इतना बड़ा, मैंने सोचा चाहे एक बार को तुम मर जाएगी कोई बात नहीं है, तेरी बच्ची का कोई नहीं कोई बात ना, कोई ना कोई तो देखेगा मरने के बाद में। चाहती तो मैं खुदकुशी भी कर सकी, सिर्फ मैंने इसी वजह से सोच के ना करा, सिर्फ मेरी बदौलत गई है मेरी बच्ची का मुंह मारता मुझे। अन्य इतनी जिल्लत है मुझे कि अब भी ऐसा जी करता है कुछ खा के मर जाए या कुछ मार के मर जाए। सिर्फ मेरी बच्ची की बदौलत है जो मैं जिल्लत की जिंदगी में भी चुप बैठी हूँ।
कितना दर्द है इस आवाज में, और इस आवाज को सुनकर किसी की भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। और अब कार्यक्रम में आपको बताते हैं कल किस विषय पर है बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा।
भारत सरकार ने टीवी चैनल एनडीटीवी इंडिया को एक दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया। वजह बताई, चैनल ने पठानकोट हमले के कवरेज के दौरान सामरिक रूप से संवेदनशील सूचनाएं प्रसारित की। एनडीटीवी ने सरकार के इस आदेश को आपातकाल जैसा बताया, जब प्रेस की आज़ादी छीनी गई थी। क्या किसी समाचार चैनल या अखबार को एक दिन बंद करने का आदेश देना मीडिया की आज़ादी पर सीधा हमला है? यही है इस हफ्ते बीबीसी इंडिया बोल का विषय। क्या हैं इस विषय पर आपके विचार? शनिवार 5 नवंबर को शाम 7:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त डायल करें इन टोल फ्री नंबरों पर 1811-7000 और 1811-7001।
पिछले दिनों भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेस सचिव रहे एसएम खान की एक पुस्तक प्रकाशित हुई, द पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम को भारत के अब तक के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से गिना जाता है। उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों पर नजर दौड़ा रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
As you say in India, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world.
ये आवाज है एरोनॉटिकल इंजीनियर, रॉकेट वैज्ञानिक, मिसाइल मैन, युग दृष्टा और अब तक शायद भारतीय जनमानस के सबसे करीब रहे राष्ट्रपति अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम की। महान वैज्ञानिक होने और देश के राष्ट्रपति बनने के बावजूद कलाम में हमेशा एक आम आदमी की जिंदगी जीने की चाहत रही। भारतीय सूचना सेवा के एसएम खान ने, जो कलाम के पूर्व प्रेस सचिव रहे हैं, उन पर एक किताब लिखी है, द पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम।
उनकी सबसे बड़ी जो एक खूबी मैं कहूँगा वो ये थी कि प्रेसिडेंट बनने के बाद भी जो उनका बिहेवियर था और एटीट्यूड था डे टू डे, वो एक बिल्कुल आम आदमी का था। तो अगर खाली वक्त होता था तो कभी भी वो टहलने निकल जाते थे, मुगल गार्डन्स में, कहीं और कुछ होता था तो इनफॉर्मली हम लोगों को बुला के कोई बात करने लगते थे। एक बार हम लोग बैठे थे कि एक टूर के दौरान, तो मैंने खाली वक्त की यूटिलाइज करने वाली बात आपको बता रहा हूँ, मैंने बुक में भी लिखी है, तो उन्होंने पूछा, अरे भाई आप लोग क्या बैठ के तुम गॉसिप सेशन चला रहे हो? हमने कहा सर कोई काम नहीं है। काम क्यों नहीं है? यू स्टार्ट ईटिंग, वो भी काम है, यू विल सेव टाइम। फिर उनकी कुछ हॉबीज़ थी टू पेन पोइट्री, कभी कभी जब ज़्यादा टाइम होता था तो वीना भी वो प्ले करते थे, रुद्र वीना, दैट वाज हिज पास टाइम फेवरेट। फिर एक उनका एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरे ख्याल में दुनिया के किसी राष्ट्रपति ने नहीं की होगी, वो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस खुद बनाया करते थे और वो अपनी काफ़ी स्पीचेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू देते थे। एक बार वो स्विट्जरलैंड गए और फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है लुजान में, और फिर उसके बाद एक लेक्चर वहाँ था, दूसरा लेक्चर उनका जिनेवा में था। तो वहाँ उन लोगों ने स्विट्जरलैंड के जितने नोबेल लॉरिएट्स हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, उन्होंने उनको बुलाया था उन सेशंस में, और एक सेशन में देर आर अबाउट 34 नोबेल लॉरिएट हु वर लिसनिंग टू प्रेसिडेंट कलाम। एंड आई रिमेंबर दोज पीपल सेइंग कि वी हैव नेवर सीन ए प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री मेकिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। और उस दिन Remember, I think it was 26th May 2006 when he visited Switzerland, and Switzerland declared it as Science Day. And now I think every year they celebrate it as Science Day to commemorate the visit of President Kalam.
Kalam ke vyast jeevan mein aaram ke lamhe bahut kam aate the, lekin wo unka bhi istemal veena bajane ya kavita likhne mein kiya karte the.
Wo jab subah uthte the तो एक तो वो सुबह फजर की नमाज़ ज़रूर अदा करते थे, और फजर की नमाज़ अपने कमरे में ही अदा करते थे, और अगर वो दिल्ली में हैं तो वो उनके पास कुरान शरीफ रहता था, तो उनके पास तीन कुरान रहते थे, एक तमिल में, एक इंग्लिश में और एक अरेबिक में। एक उनके पास भगवद गीता ज़रूर रहती थी, तो वो इन रिलीजियस ट्रीटाइजेस का रोज़ाना 10-15 मिनट मताला ज़रूर करते थे। उसके बाद उनका टहलने का प्रोग्राम होता था, खाने का टाइम बड़ा एरेटिक होता था, तो वो 10:30-11 बजे के तकरीबन नाश्ता करते थे, फिर उसके बाद ऑफिस चले जाते थे और 4 बजे उनका लंच होता था, और फिर रात के 12:30-12 बजे उनका डिनर होता था। उसके लिए वो अपने स्टाफ को कह देते थे कि भाई आप मेरा खाना रख कर चले जाइए, मेरा वेट मत कीजिए, क्योंकि मैं तो बहुत लेट सोता हूँ, 12:30 बजे खाना खाऊंगा तो आप कहाँ रोज़ाना मेरा इंतज़ार करेंगे, मैं खुद अपना खाना करके, क्योंकि अकेले रहते थे फैमिली विंग में राष्ट्रपति भवन में, तो जो अटेंडेंट्स होते थे उनको वो पहले रुख्सत कर देते थे।
2002 में राष्ट्रपति पद के लिए तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत और महाराष्ट्र के राज्यपाल पीसी अलेक्जेंडर का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। अचानक कलाम का नाम फ्लोट हुआ और उस समय अन्ना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की भूमिका निभा रहे डॉक्टर कलाम के पास प्रधानमंत्री कार्यालय से एक फोन आया। कलाम के निकट सहयोगी रहे और उनकी जीवनी लिखने वाले अरुण तिवारी बताते हैं,
वाजपेयी साहब की एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी कि उस समय एक ऐसे इंसान को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाए कि जिसका नाम परमाणु शक्ति से जुड़ा हुआ हो, जो एक माइनॉरिटी, सो कॉल्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी है उससे बिलोंग करता हो, जिसका व्यक्तिगत जीवन पाक साफ हो, जो एक सब जो इस तरह की जो टैग होते हैं आइडियोलॉजिकल टैग उनसे परे हो। तो क्योंकि वाजपेयी साहब के साथ कलाम साहब का बड़ा लंबे समय तक, जब वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र थे तो उनके साथ काफ़ी उनकी संपर्क में रहे। इंसिडेंटली मैं उनके साथ था उस दिन अन्ना यूनिवर्सिटी में, ऐसा कुछ एक इत्तेफाक था। और जब सुबह कलाम साहब उठे थे तो उन्हें पता भी नहीं था कि आज शाम होते होते जो है ये सब होने वाला है। तो वो तो अपना ऑफिस में बैठे थे तो एक फ़ोन आया था वाइस चांसलर साहब कलानिधि साहब के यहाँ से कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपको बात करने की कोशिश कर रहा है। तो वो चल के वहाँ तक गए थे और उस फोन पर जब बात हुई तो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी आए और उन्होंने कहा कि देश की इच्छा है कि आप हमारे राष्ट्रपति बने। तो कलाम साहब ने कहा कि मुझे कुछ एक घंटे का वक्त दीजिए कि मैं अपने कुछ नज़दीकी लोगों से इसके बारे में चर्चा कर सकूँ। तो वाजपेयी साहब ने कहा कि आप वक्त तो ले लीजिए लेकिन मुझे हाँ में जवाब चाहिए। वो फोन रखने के बाद आई कैन नेवर फॉरगेट दैट एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस।
जब वो राष्ट्रपति बने तो पहला सवाल ये उठा कि डॉक्टर कलाम की ड्रेस क्या हो। उस समय तक तो वो हल्के आसमानी रंग की कमीज और स्पोर्ट्स शू पहना करते थे। राष्ट्रपति रहते हुए वो ये सब नहीं पहन सकते थे, इसलिए उनके लिए चार बंद गले के सूट सिलवाए गए।
एक दुकान है कपड़े सिलने की, उनको एक ये एक ट्रेडिशन है कि वही प्रेसिडेंट साहब के बंद गले सिलते हैं। जब उनके बंद गले आए तो पहली बार उन्होंने जिंदगी में बंद गले का सूट पहना और वो जब पहनने के बाद उनको थोड़ा उन्होंने कहा कि ये तो मेरा गला घुट रहा है इसमें तो मैं तो नहीं पहन सकता हूँ, क्योंकि वो टाई भी मजबूरी में लगाते थे। उसके बाद जब ये बताया गया कि ये तो आपको पहनना ही पड़ेगा, ये तो ड्रेस है प्रेसिडेंट की, तो फिर एक सॉल्यूशन निकला कि इसका थोड़ा सा पोर्शन काट देते हैं, जो ये होता है ना थोरेक्स होता है जहाँ पर, वहाँ पर इस पोर्शन को काट देते हैं। तो बंद गला भी हो गया और वो वहाँ से उसको थोड़ा पोर्शन, एक इंच का पोर्शन काट भी दिया गया वहाँ से। तो बाद में फिर उसका नाम जो है कलाम सूट बन गया, वो एक फैशन बन गया कलाम सूट। एक बार वो टाई लगा के मैं गाड़ी में उनके साथ जा रहा था तो मैंने कहा, सर आज आपने टाई लगा रखी है, कोई खास बात है क्या? तो ही सेज या दैट गाई इज इन टाउन, आई हैव टू वियर ए टाई। तो बाद में पता लगा वो गाई जो थे वो जॉन मेजर साहब प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, वो आए हुए थे तो उनसे मिलने जाना था तो इसलिए टाई लगाई हुई थी उन्होंने। तो उसके बाद वो चश्मा साफ कर रहे थे टाई से, तो मैंने कहा, सर आप चश्मा साफ कर रहे हैं? बोले, अब इसका कुछ तो इस्तेमाल होना चाहिए ना, ये गले में लटकी हुई है। टाई का एक इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क जो है, पहली बार मैंने किसी को लगाते हुए देखा कि हम सब लोग टाई पहन लेते हैं और बिना ये सोचे समझे कि ये लटका रखा है, इसका क्या इस्तेमाल है, कुछ तो हमने तो कभी सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन साहब ने कम से कम चश्मा साफ करके कुछ तो उसका इस्तेमाल ढूंढ लिया।
डॉक्टर कलाम ने विवाह नहीं किया लेकिन उनका एक बड़ा परिवार था। वो खासतौर से अपने बड़े भाई एपीजी मुथुमराई कयार से बहुत नजदीक थे। बहुत कम लोगों को पता है कि जब कलाम राष्ट्रपति थे तो उनके भाई का पौत्र एक किराए का कमरा लेकर दिल्ली के मुनेरका इलाके में रहा करता था। एक बार डॉक्टर कलाम ने अपने पूरे परिवार को राष्ट्रपति भवन घूमने के लिए दिल्ली आमंत्रित किया।
फैमिली उनकी माशाल्लाह बहुत बड़ी है। उन्होंने फिर ये कहा कि एक बार मैं अपनी सारी फैमिली को यहाँ इनवाइट करूँगा, क्योंकि दे शुड ऑल्सो कम एंड सी राष्ट्रपति भवन एंड आई एम हियर एज प्रेसिडेंट, तो एटलीस्ट दे शुड विजिट मी एटलीस्ट वंस। तो उन्होंने सभी लोगों को इन्वाइट किया और वो तक तादाद 53 थी। सबके रिजर्वेशन कराए उन्होंने पहले तो मदुरई से ट्रेन से, फिर यहाँ उन्होंने राष्ट्रपति भवन में ये कहा कि भाई मैं कोई राष्ट्रपति भवन पे इन लोगों को, दे विल नॉट बी गेस्ट ऑफ राष्ट्रपति भवन, दे विल बी माय गेस्ट एंड आई विल पे फॉर देयर एवरीथिंग। इवन ही हैड ऑर्गेनाइज ए बस
to receive them at the station from his own expenses. And उन्होंने ये नहीं किया कि राष्ट्रपति भवन की कारें जाती और उनको ले आती. फिर उनका यहाँ से अजमेर जाने का प्रोग्राम था तो उसी बस में अजमेर शरीफ गए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर, और राष्ट्रपति भवन में तकरीबन 5 दिन ठहरे. तो उन्होंने कंट्रोलर ऑफ हाउस होल्ड को ये कहा था कि इनके खाने वगैरह पर जो भी ख़र्चा होगा वो आप मेरे को दीजिए, आई विल मेक पेमेंट बाई चेक. तो उस तरह से तकरीबन 3,00,000+ का ख़र्चा जो था वो उन्होंने अपनी सैलरी से पेमेंट किया.
डॉक्टर कलाम के राष्ट्रपति बनने से पहले तक राष्ट्रपति भवन रमज़ान के दौरान इफ्तार पार्टी का आयोजन किया करता था. उन्होंने तय किया कि इफ्तार में खर्च होने वाले पैसे को विभिन्न अनाथालयों में ज़रूरतमंदों के बीच बांट दिया जाए.
जब वो प्रेसिडेंट बने और रमज़ान शरीफ आए तो ये हुआ कि उनके सामने प्रपोजल आया कि राष्ट्रपति भवन में हर साल इफ्तार होती है जिसमें तकरीबन 600 लोगों को अफ्तार और डिनर पर बुलाया जाता है. तो उन्होंने मेरे से भी डिस्कस किया और कुछ उलेमाओं से भी डिस्कस किया कि क्या अफ्तार का होना कोई मजहबी चीज़ है, और अगर इस अफ्तार को न किया जाए तो उसका कोई मजहब से ताल्लुक़ है. तो सबकी राय ये थी कि ये कोई मजहबी अफ्तार की दावत देना, राष्ट्रपति भवन में कोई डिनर करना, कोई एक ये एक सोशल इवेंट है और उसको अगर आप चाहें तो करें, चाहें तो ना करें, और अगर आप उसका कोई बेटर सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं तो ज़रूर ढूंढें. तो उन्होंने ये कहा कि उसका बेहतर सब्स्टिट्यूट ये होगा कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उस महीने के दौरान गरीब लोगों की मदद की जाए. तो उन्होंने एक फ़ैसला ये लिया कि राष्ट्रपति भवन अफ्तार में जितना ख़र्चा करता है प्लस उन्होंने ये कहा कि उतने ही पैसे मैं दूंगा अपनी सैलरी से, और इस दोनों को मिलाकर आप लोग ये करिए कि कुछ ऑर्फेनेजेस, कुछ मदारस, कुछ और स्कूल्स, कुछ और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनको हम मदद करें और उनको सामान पहुँचाएँ और आप लोग पर्सनली जाइए. तो तकरीबन हर साल काफ़ी जगहों पर तो मैं पर्सनली जाता था जो आसपास के एरियाज़ में दिल्ली के, जैसे हम लोग गाज़ियाबाद गए, हापुड़ गए, बुलंदशहर गए. तो मकसद ये था कि उन 5 सालों में ये किया गया कि उस पूरी मनी प्लस कलाम साहब्स ओन मनी विच ही यूज्ड टू गिव एवरी ईयर वी हैड स्पेंट ऑन दीज पीपल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान.
डॉक्टर कलाम के राष्ट्रपति कार्यकाल का सबसे अलग पहलू था उनका मानवीय पक्ष. उनके सचिव रहे पीएम नायर एक किस्सा बताते हैं.
एक बार मेरी माँ मेरे साथ रहने के लिए दिल्ली आई. एक दिन उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वो कलाम से मिलना चाहती हैं. मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा. मैंने बहुत झिझकते हुए कलाम साहब से अपनी माँ की वो इच्छा बताई. उन्होंने तपाक से जवाब दिया रविवार 12 बजे उनको ले आइए. रविवार को जब मैं अपनी माँ और पत्नी के साथ राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ कोर्ट पहुंचा तो राष्ट्रपति के 3 ADC मेरी माँ के स्वागत में खड़े थे. मुख्य ड्राइंग रूम के दरवाजे पर घर के कपड़ों में कमीज और वेस्टी पहने कलाम साहब खुद हमारा इंतजार कर रहे थे. मेरी माँ ने कलाम को आशीर्वाद दिया. 25 मिनटों के बाद मैंने कहा कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे. उन्होंने कहा एक मिनट रुको. वो बगल के कमरे में गए और एक खूबसूरत सी शॉल ले आए. उसे उन्होंने मेरी माँ को ओढ़ा दिया. जब हम लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे तो राष्ट्रपति ने मुझसे कहा मिस्टर नायर क्या मैं माँ को छोड़ने नीचे तक आऊं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं सर. लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले मैंने देखा कि कलाम साहब झुक कर मेरी माँ को नमस्ते कह रहे थे. लौटते समय मेरी माँ ने मुझसे कहा उनसे कितना कुछ सीखा जा सकता है.
रेहान फदल, BBC दिल्ली.
सुबह की विश्व भारती सभा में आप इस विवेचना को दोबारा सुन सकते हैं. और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं.
BBC समाचार. प्रदूषण के चलते दिल्ली में अधिकारियों ने करीब 1000 प्राइमरी स्कूलों को शनिवार को बंद रखने के आदेश दिए हैं. उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति पार्क हुन हे को चेतावनी दी है कि वो अपनी राजनीतिक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए उत्तर कोरिया में डर ना फैलाएं. तुर्की के अधिकारी के मुताबिक कुछ समर्थित विपक्षी राजनीतिक पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 नेताओं समेत 11 सांसदों को गिरफ्तार किया गया और इसके कुछ ही देर बाद एक पुलिस स्टेशन के बाहर धमाका हुआ. BBC समाचार.
तो दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोठिया। घटना चक्र लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।